עומק גן, תמידה נסק נראה, גרון שלא נגיעה, תקשו גרון נתניין, את עצמא שירו לי. סביד שהייתה נמנו בשתם סתאבי גם יהיה, אבל גבי ישראל ימרו פחדה, אבל דעתי סבור דנדיר. תאיסי ושתם שהייתה נראה כלום הנוצאה. סביד ואית גדה, דור שבא, סביד גאור, חצה וינדה. הרי קשתה, הרי קשתה, קשתה, קשתה,
הרי, 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 הרי,
הרי, उसमें पिछली बार हमने चर्चा किया था कि 6 प्रश्न पूछे गए थे अर्जुन के द्वारा शुरुआत में, जिसमें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, पुरुष और प्रकृति। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है वो शरीर, फिर क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा दोनों ही है, फिर ज्ञान, ज्ञान उन दोनों को जानना, ज्ञेय वही दोनों आत्मा और परमात्मा, और पुरुष परमात्मा और प्रकृति। तो इस तरह से ये 6 विषयों की चर्चा अर्जुन ने पूछी थी। श्री प्रभुपाद इस अध्याय के अंत में ऐसा कहते हैं कि ये बहुत ही साइंटिफिक चैप्टर है, क्योंकि इसमें कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत या तत्वज्ञान इसके अंदर प्रस्तुत होता है। ऐसे तो पूरी भगवद गीता में तत्वज्ञान है, लेकिन ये जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है 13 चैप्टर। इसमें अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो पूरा सूत्र बदल जाएगा। यहाँ पर ये सारे फॉर्मूला है, अर्थात ये कॉन्सेप्टिव, कॉन्सेप्ट वाला ज्ञान है। 13वां जो अध्याय है उसमें कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। अगर आप इसको ढंग से समझ लेते हैं तो बाकी सब चीज अपने आप खुल जाती है। ये मास्टर की है जैसे फिलोसॉफी का, कि इसमें से अगर आप जो सीखते हो, दैट मीन्स आप पूरा फिलोसॉफी का जो मूल तत्व है वो समझ जाते हो। और फिलोसॉफी का मूल तत्व समझ जाते हो, इसका अर्थ क्या है कि आप 4 वेद में जो बताया वो सब इसके अंदर समझ जाते हो। ब्रेक साम यजुर् सब में जो लिखा है सब इसमें आप समझ जाते हो। फिर जितने पुराण है, 18 पुराण, वो सब में जो भी तत्व ज्ञान है वो सब इससे समझ जाते हो, केवल ये 13 चैप्टर से जो तत्व ज्ञान है वो आप समझ जाते हो। लेकिन इसका जो अंत अर्थात जो वेदांत है वो 18वें अध्याय में आता है। फिर से भगवान कहते मेरी शरणागत, अर्थात भक्ति योग जो है वो अंतिम चरम सीमा है तत्व ज्ञान की। लेकिन हमारी जो कृष्ण भावनावृत आंदोलन की जो फिलोसॉफी है, इस कौन जिस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ये सिद्धांत 13वें अध्याय इसका मूलभूत सूत्र है। और ये एक्चुअली इस्कॉन शास्त्र के आधार पे काम करता है, वेदों के आधार पे, श्रीमद् भागवतम के आधार पे इस तरह से काम करता है। सो ये 6 जो प्रश्न पूछे गए प्रभुपाद ने इस विषय में, मैं प्रभुपाद के तात्पर्य को और प्रभुपाद के लेक्चर्स को अधिक यूज करता हूँ, क्योंकि इसको प्रभुपाद ने लंबे लंबे तात्पर्य दिए और लंबे लंबे लेक्चर्स दिए हैं। सो आई एम ट्राइंग टू, मैं उसको ज्यादा यूज करता हूँ आपके साथ। 20वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, 20 नंबर का श्लोक का अनुवाद पढ़िए।
भौतिक प्रकृति तथा जीवन अनादि समझवा अने तेमना विकार तथा गुणों ने प्रकृति जन्य गणवा।
तो दोनों ही जो क्षेत्र और क्षेत्र, जो दोनों क्षेत्रज्ञ है परमात्मा और आत्मा, ये लोग सनातन है, ये प्रकृति से पर है। लेकिन जो विकार आते हैं वो प्रकृति के संसर्ग से आते हैं या प्रकृति के कारण आते हैं। तो प्रकृति को समझाए भगवान अभी समझाना शुरू कर रहे। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है जिसको भोगा जाए, इसको प्रकृति कहते हैं। यह समझ लो कि एप्पल, तो एप्पल जो है वो फ्रूट है। अभी ये फ्रूट अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन उसको कोई खाएगा एप्पल को, तो वो उसका एक्चुअली उपयोग है, नहीं तो एप्पल किस काम का। तो जो खाने वाला है वो पुरुष माना जाता है, भोक्ता, जो भोग करता है। और प्रकृति जो है वो भोग्या बोली जाती है, भोग्या अर्थात जिसको भोगा जाए। ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट दैट इज प्रकृति, एंड एंजॉयर दैट इज पुरुष, भोक्ता पुरुष है। पुरुष मीन्स एंजॉयर, हम में से एक भी व्यक्ति पुरुष नहीं है, ना मैं पुरुष हूं ना कोई और पुरुष है, और ना ही कोई स्त्री भोक्ता है। सभी पुरुष हो या स्त्री हो, ये सभी प्रकृति है, भोग्या है। पुरुष केवल एक ही है। जो एंजॉयर या भोक्ता का जो विचार है, प्रभुपाद कहते हैं कि दैट इज सो कॉल्ड विमेन एंड सो कॉल्ड मैन ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय। हम लोग प्रकृति होकर के पुरुष बनने की चेष्टा करते हैं, बस ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारा संघर्ष है। हम प्रकृति होकर के पुरुष बनने का प्रयास करते हैं, इसके कारण कष्ट होता है। पुरुष हो वो स्त्री को भोगना चाहता है, स्त्री है पुरुष को भोगना चाहती है। पुरुष सोचता, पुरुष ऐसा सोचता है कि मैं भोगता हूं और स्त्री प्रकृति है, और स्त्री सोचती है कि मैं भोगता हूं और पुरुष प्रकृति है, अर्थात दोनों ही डोमिनेटिंग है, दोनों ही भोग करना चाहते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को अपना प्रकृति मानते हैं, हालांकि दोनों ही गलत है। पुरुष जो है, जो जिसको आप पुरुष शरीरधारी, जो पुरुष धारण अर्थात जो क्या बोलते हैं उसको, मेल बॉडी, जो मेल बॉडी है, मेल शरीर है, वो भी प्रकृति है, क्योंकि वो प्रकृति होकर के पुरुष बनने का प्रयास करता है, इसलिए संघर्ष कर रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है। सो नॉट ओनली मैन, अभी प्रभुपाद कहते हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष भोग करना चाहता है या फिर केवल स्त्री भोग करना चाहती है, ऐसा नहीं है। बिल्ली भी यही चाहती है, बिल्ली में भी पुरुष और स्त्री होते हैं, वो भी ऐसा चाहते हैं। बिल्ली सोचते है कि मैं भोग करूंगी, उसका मेल बिल्ली होता है, वो सोचता है मैं। बिल्ली, कुत्ता, यहां तक कि पेड़ पौधे भी ये सोचते हैं कि मैं भोगता हूं, और उनमें भी ऐसा भाव। एक्वेटिक्स, जलचर भी ऐसा सोचता है, मछली भी ऐसा सोचती है कि मैं भोगता हूं, और ये सभी लोग अपने आप को स्वामी मानते हैं, ये सभी लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं संसार में गिर गया। एवरीवन, बिकॉज दिस मटेरियल वर्ल्ड मीन्स ऑल द लिविंग एनर्जीज। अभी ये हुआ निम्न तक, बिगिनिंग विथ लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक सब लोग अपने आप को भोक्ता मानते हैं, एंजॉयर। दैट इज समथिंग, एवरीवन दे आर ऑल सीकिंग फॉर एंजॉयमेंट, हम सब सुख की खोज में है, इसलिए वो सुख भोग करने दैट इज पुरुष, हु इज सीकिंग एंजॉयमेंट इज अ पुरुष, वो पुरुष है, लेकिन एक्चुअल पुरुष कृष्ण है, हम सब प्रकृति है। हम पुरुष बनने का प्रयास करते हैं और उसको बोलते हैं माया, जो हो नहीं सकता हम वो बनना चाहते हैं, उसको बोलते हैं माया। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा, हमारा ये शरीर हमने धारण किया इस तरह से, और हम भूल गए हैं कि हम कृष्ण के अंश है, आत्मा है। एक्चुअली हमारा काम है एंजॉय करना नहीं, लेकिन कृष्ण के एंजॉय में सहायता करना, ये हमारा काम है। इसलिए कृष्ण भावनामृत के अनुकूल होकर के जो भी कार्य किया जाए, अगर आप भक्ति में जुड़ जाते हम तभी भी हमारा उद्देश्य यही होता है कि जैसा हमने पिछली बार चर्चा किया था, कोई भी कार्य कोई भी चीज मेरे आनंद के लिए या फिर मेरे सीनियर के आनंद के लिए, इस तरह से नहीं होता ये। जो कुछ भी हम करते हैं प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं ये कार्य ये चीज, मैं जो कुछ करता हूं तुम जो कुछ करते हो उन सब का एक ही उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता। इसलिए इसमें बीच में कोई आता नहीं इसके अंदर कि इसको प्रसन्न करना उसको प्रसन्न करना। गुरु का एक ही उद्देश्य होता है कृष्ण को प्रसन्न करना, इसलिए गुरु को प्रसन्न करने का शास्त्र में विधान है कि गुरु को प्रसन्न किया जाए। वो इसलिए क्योंकि उनका और कृष्ण का जो उद्देश्य एक ही है, इसलिए गुरु चाहते हैं कि तुम कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण चाहते हैं कि तुम कृष्ण की सेवा करो, इसलिए दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो इसलिए हम अगर अनुकूल भाव से कृष्ण भावनामृत में जुड़ते, जैसे वृंदावन के वासी, वृंदावनवासी उनका एक जो यूनिक क्वालिटी है वृंदावनवासियों का, वो किस तरह से ब्रजवासी बनते हैं, आई मीन किस तरह से उनका वृंदावनवासी का स्पेशल उपाधि प्राप्त होता है ब्रजवासी का, उनका जो सबसे बड़ा क्वालिटी वो है कि वो सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। एंड दे फील ब्लेस्ड जब उनका उपयोग कृष्ण की सेवा में होता है, तब उनको ऐसा वो लोग अनुभव करते हैं कि हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, हम धन्य हुए। अगर हमारी किसी काम में तो आए कृष्ण के, ऐसे किसी कोई छोटी मोटी सेवा तो मुझसे, मेरे कारण कृष्ण को थोड़ी तो प्रसन्नता होगी, ऐसे थोड़ा वट एवर आई कैन डू लाइक दैट। जैसे वृंदावन में जो तोता पैरट होता है वो भी ये सोचता है कि मैं कृष्ण की कैसे सेवा करूं। वृंदावन में जो क्या बोलते हैं वो ये रैबिट
खरगोश
वो भी ऐसा सोचता है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। मयूर होता है वो भी सोचता है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। कृष्ण का कुछ पालतू बंदर भी है, खट्टी कृष्ण के पालतू बंदर का नाम, पालतू हिरण भी है, वो लोग कृष्ण के आदेश के अनुसार काम करते। तो ये सब लोग अपनी अपनी सेवा देने से अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। जैसे कृष्ण कभी वन से गुजरते वृंदावन में, तो वहां के जो पेड़ होता है पेड़, वो लोग अपने अपना अपना बेस्ट कैपेसिटी यू नो बेस्ट अपना देने का प्रयास करते हैं। छाया वृक्ष किसके लिए फेमस होता है? छाया के लिए फेमस होता है, फिर फ्रूट्स फूल उसके लिए फेमस होता है, और ठंडी की सीजन में लकड़ा देता है ताकि आप उसको जला सको। ये सब कुछ दे आर गिविंग देयर बेस्ट। कृष्ण अगर किसी वन से गुजरते तो झुक जाते पेड़ और उनको फूल फल अर्पण करते, कुछ लोग उनको दंडवत करते, आई मीन पेड़ इतने झुक जाते कि सीधे चरण में घुस जाते। कुछ पेड़ ऐसे दंडवत करते, ऐसे आई हैव सीन कुछ एक मानसरोवर करके जगह है ब्रजमंडल में, वहां पर जितने भी पेड़ है सब झुके हुए, सब कृष्ण को प्रणाम करते हुए सब पेड़। अब अगर देखो सरोवर के आसपास में बहुत कम लोग जाते उधर, और सब पूरा झुका हुआ, सब पेड़ झुके हुए उधर। सो लाइक दिस हम अभी बात कर रहे हैं उन लोगों की, पेड़ पौधे पशु गाय इन लोग की बात कर रहे थे। अगर इन लोग का ये विचार है तो फिर ब्रजवासियों का क्या विचार होगा? ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो ब्रजवासी,
निधिवन में भी झुके हुए,
निधिवन में भी झुके हुए। तो लोग कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत सेवा कुछ हो जाए, दे फील वेरी सो दिस इज वृंदावन। इट इज ऑल यू ट्राई टू मेक कृष्ण हैप्पी एंड यू कन्वर्ट एंटायर थिंग इनटू वृंदावन और वैकुंठ। आप कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते और हमारी समस्या क्या है कि हम ऑपोजिट कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहेंगे तो सब कुछ वृंदावन जैसा दिखेगा आपको। प्रभुपाद समटाइम प्रभुपाद ऑल्सो से वृंदावन इज नॉट दैट कि आप एक जगह जाते हो वृंदावन है, यू कैन क्रिएट वृंदावन हियर ऑल्सो, आप यहां पर भी वृंदावन बना सकते हो, लेकिन आप भाव ये प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको, सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग होना चाहिए। वी डोंट हैव दैट एटीट्यूड, हम माया के वश में है, हम पुरुष बनना चाहते हैं, वाई शुड कृष्ण एंजॉय, आई विल ऑल्सो एंजॉय, भगवान अकेले क्यों भोग करे, मैं भोग करूंगा, ये रसगुल्ला मेरे खाने के लिए, ये रबड़ी मेरे खाने के लिए, इसका भोक्ता मैं हूं, ये अच्छी चीज मेरे, ये फूल अच्छा है सुगंध मेरे सुगंध के लिए, मैं मेरे परिवार का भोग करूं, मैं मेरी पत्नी का भोग करूंगा, हम भोक्ता बनना चाहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम समस्या हो जाती है। वो अपने आप को कहता है मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही गौड़ हूं, ऐसा मानने लगता है। हालांकि कई बार कृष्ण भक्त भी ऐसा सोचने लगता है कि मैं भगवान का दास ही हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भोग करना चाहता है, डिस्काउंट लेना चाहता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो मुझे, मैं थोड़ा भोग करना चाहता हूं ऐसा। अभी वो जब तक वो वृत्ति रहेगी तब तक हम स्ट्रगल करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, वो भोग करने की वृत्ति रहेगी तब तक संघर्ष होगा हमारा, और वो जो संघर्ष है वो सफरिंग है, सफरिंग का अर्थ होता है पेन, दुख, उसमें फिर कष्ट होती है, भय लगता है, एंग्जाइटी आती है, चिंता होती है, सजा मिलती है प्रकृति के द्वारा, जिसमें आपको ठंडी ज्यादा, कभी गर्मी ज्यादा, कभी भूकंप, कभी सुनामी, कभी अन्न का प्रॉब्लम, कभी इसका प्रॉब्लम, कभी उसका प्रॉब्लम, इस तरह से हजार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं आपके सामने, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं। So we are trying to enjoy, that's going on, enjoyable in this world, living here is trying to enjoy it, they are not actually enjoying, they are suffering. वो लोग entangle हो जाते हैं क्योंकि इस प्रकार की अलग अलग मानसिकता उनके मन में आ जाती है कि भोग करने की, लेकिन देखो उनका सफरिंग कैसे होता है, मैं भोग करना चाहता हूँ इसलिए मेरी मानसिकता भोग करने की हो गई, हर एक वस्तु को मैं भोग करने की इच्छा करूंगा। अभी ये भोग करने की इच्छा के कारण जब मेरा मृत्यु समय आएगा उस समय मुझे इसी के आधार पर नया शरीर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं भोग करना चाहता हूं। सो इसी मेंटालिटी से दूसरा शरीर प्राप्त होता है और फिर हम बद्ध हो जाते हैं और हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं, दूसरा शरीर प्राप्त होता है फिर, और फिर अगर वो मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होता है तो फिर वही कर दे भक्षण करे नाना योनि सदा फिरे साथ जो है मध पाते जाए, फिर अनेकाने की योनि में घूमते और क्या 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 खाने का नहीं खाने का कुछ भी करते, जैसे अभी आज सुबह मैं चैंटिंग कर रहा था मंदिर में, तो वो क्या होता है वो गिलहरी क्या बोलते हैं उसको, वो गिलहरी स्क्विरल गिलहरी राइट, तो वो मेरे आजू बाजू घूम रही थी, हरे कृष्ण जप कर रहा था, तो कभी थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे ऊपर देखती थी मेरे सामने सामने इधर ये लैपटॉप और मैं इधर बैठा हूँ, इधर आती थी मेरे पास, तो आती थी मैं हरे कृष्ण जप कर रहा था ऐसे मेरे सामने देखती थी, फिर वापस अपने खाने में लग जाती और जनरली पत्ते खाती जनरली, लेकिन भूमि पे पड़ा हुआ कुछ भी है उसको ट्राई कर दे, प्राणमय अन्नमय, हमने लास्ट टाइम सुना था अन्नमय, तो ये अन्नमय कुछ भी मुंह में डालते तो अधिकतर लोग अन्नमय हो जाते हैं, अधिकतर अन्नमय या प्राणमय दो में से एक ही होता है मटेरियल वर्ल्ड में, कौन से लोग, जो लोग पुरुष बनने का प्रयास करते हैं, जो लोग भोक्ता बनना चाहते हैं। भक्तों को भी ये समझना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में हम जो जुड़े हैं इसलिए सब लोग भगवान की सेवा करें ये आशा की जानी चाहिए। अगर आप अगर कोई अपनी सेवा चाहता है, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अपना संतोष चाहता है, तो उससे आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा करना, या फिर हम ही किसी को ऐसा बोल रहे हैं कि आप मैं जैसे बोलता हूँ वैसा करना पड़ेगा, वो कब हो सकता है कि अगर आपको गुरु के द्वारा ये परमिशन प्राप्त है या फिर आप उनको सही ढंग से सिखाना चाहते हो, लेकिन कई बार अधिकतर केस में क्या होता है कि वो स्वयं इतना सिद्ध नहीं होता है, लेकिन दूसरों को गुरु की तरह आदेश देता है, तो समस्या क्या हो जाती है कि वो तरीका गलत हो जाता है। फिर कृष्ण भावनामृत जो है उसको सिखाने का तरीका प्रभुपाद ने सिखाया। आप अपने अपने तरीके थोड़े बहुत हो सकते हो 19-20, लेकिन आप मूल सिद्धांत से बदल नहीं सकते, मूल सिद्धांत को नहीं बदल सकते। और मूल सिद्धांत क्या है, हम पुरुष नहीं हो सकते, कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, ये मूल सिद्धांत है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रसस, प्रभुपाद ने कहा कि इसके आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम सबको 5 रसों के विषय में, जैसे हमने पहले चर्चा किया हुआ है, तो हम एंजॉय करना चाहते हैं दास्य वात्सल्य, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, एंजॉय करना चाहते। देयरफॉर वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, विविधता जो है वो सुख आनंद की माता मानी जाती है, विदाउट वैरायटी एंजॉयमेंट नहीं होता है। सो वी लव समबडी एज ए फ्रेंड, वी लव समबडी एज ए वाइफ, वी लव समबडी एज ए फादर, किसी को हम मित्र की तरह प्रेम करते, किसी को पत्नी मानकर प्रेम करते, किसी को पिता मानकर प्रेम करते हैं, किसी को माता के रूप में प्रेम करते हैं, लेकिन ये सब रिफ्लेक्टेड हो जाता है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये माया है। इसलिए हमें संतोष प्राप्त नहीं होता, हमारा संतोष तभी प्राप्त हो सकता है कि जब हम इसको कृष्ण के साथ जोड़े, तो सही संबंध प्राप्त होता है। तो जो एंजॉय करने की जो मेंटेलिटी है पुरुष की, उससे अच्छा है कि आप इस 4-5 प्रकार के जो रस है, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, मुख्य 4 है, इनके माध्यम से लेट कृष्ण एंजॉय यू, कृष्ण को आप के रूप में आप उनको अपने आप को ऑफर करो कि लो कृष्ण, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं, आप जैसे नचाना चाहो वैसे नचाओ, आप जिस तरह से कठपुतली की तरह मुझे जैसा आप आदेश दोगे वो सबका मैं पालन करूंगा, इस तरह से मैं अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, देन इट इज पॉसिबल। मायावादी फिलोसोफर कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो प्रभुपाद मना करते हैं इस बात को। प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्म को सत्य बोलते हो फिर जगत को मिथ्या क्यों बोलते हो, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, जगत तो भूमि रापो नलो वायु, मेरी प्रकृति भगवान कहते हैं, तो ये मिथ्या कैसे हो सकती है, दिस इज नॉनसेंस, ये मिथ्या कैसे हो सकती है, जगत मिथ्या नहीं है, कृष्ण भी सत्य है और ये विश्व भी सत्य है, ये जगत जो है वो भी सत्य है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कृष्ण एंजॉयर है और हम एंजॉयर है, हमारा एंजॉयर बनने का जो वृत्ति है वो मिथ्या है, भोक्ता बनने का जो वृत्ति है वो मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं है।
मिथ्या
का अर्थ है भ्रम, भ्रम जैसे आपको हाईवे पर पानी दिखता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको मिथ्या बोलते हैं। जैसे आप रेगिस्तान में पानी दिखता है आपको, भ्रम होता है, आभास, मायावादी लोग ऐसा बोलते हैं, ड्रीम, हाँ ड्रीम, ड्रीम को भी सपना को भी बोल सकते हो। सपने में कैसा होता है, जैसे आप सपने में कोई पशु आता है आपके पास, आप भयभीत हो जाते हो, तो उसको वो मिथ्या हो सकता है।
इसीलिए आपने पहले बताया था कि जगत जो है अस्थाई है,
मिथ्या नहीं है,
मिथ्या
नहीं है, यस,
और स्वप्न भी
अस्थाई है,
न सत्य है और न असत्य है,
यस,
लेकिन उसका अस्तित्व तो है,
उसका अस्तित्व है, लेकिन वो आपको अनुभव करवाता है बस, लेकिन वास्तविकता से भिन्न है।
और कई बार जैसे स्वप्न में आदेश देते हैं गुरु महाराज,
हाँ, यस,
तो इसीलिए स्वप्न को भी पूरी तरह से नहीं कहा,
पूर्ण रूप से मिथ्या नहीं है, क्योंकि आपको अनुभव पूरा होता है उसका, क्योंकि जैसे शास्त्र में से कई जगह ऐसा कहा है कि भगवान भी कृपा करते हैं कई बार कि आपको कोई विशेष कष्ट भुगतना हो, लेकिन भगवान का हृदय बहुत कोमल है, वो सोचते हैं कि ये बेचारा क्या रोएगा, इसको भोग करके समझ नहीं पाए, संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, तो क्या करते हैं, सपने में करवा देते वो सब, सॉरी, सपने में भोग करवा देते हैं, सपना में भोग करेगा दुख, सपना में दुखी होगा तो दुखी तो हो जाएगा एक बार, लेकिन वो समस्या उसके सामने नहीं आएगी। करवाते भगवान कहीं ऐसा करवा देते, कोई भयानक सपना आता है तो फिर समझ लो हाँ कृष्ण बचा लिया, क्योंकि वो तो सपना ही था लेकिन आपने असली अनुभव किया। आपको होता होगा शायद ऐसा कोई भयानक सपना आता होगा, कुछ सम आर ड्रीमर्स सम दे डोंट, सपने का तो कोई गारंटी नहीं होता है।
आपने बताया कि जो ये पुरुष और प्रकृति का कंसेप्ट, तो ये नए भक्तों को जब हम रीच करते हैं अब वो अगर उनको ये बता दे जो एकदम शुरुआत के हैं तो वो मतलब उनको ऐसा हो जाएगा कि हम तो फिर कुछ एंजॉय नहीं कर सकते, तो उनको कैसे प्रेजेंट करने का? ये
आप नए भक्तों को प्रेजेंट करना चाहते हो तो उनका जो निष्फलता है पुरुष बनने का वो उनको दिखाना पड़ता है कि हम जो बात बता रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही प्रयास करके देख लो आप कितना भोग कर पाते हो। एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई व्यक्ति अगर मछली खाता है, अब ये मछली जो है वो सड़ी हुई चीज है, लेकिन माया उसको ये भुला देती है कि ये सड़ी हुई चीज है, उसको उसका स्वाद दिखाई देता है, हालांकि उसको खुद को भी पता है ये सड़ी हुई चीज है, लेकिन वो भूल जाता है थोड़ी देर के लिए माया के कारण, स्वाद के कारण वो ऐसा सोचता है कि ये कोई प्रॉब्लम। तो ये यही तरीका होता है, जैसे कोई पुरुष कोई स्त्री एक दूसरे के साथ संबंध बांध रहे राइट, लेकिन उसमें वो पुरुष को अगर ये पता पड़ जाए या स्त्री को अगर ये पता पड़ जाए कि इसके शरीर के अंदर तो पूरा गंध ही गंध भरा पड़ा है तो क्या भोग करेगा वो कैसे संबंध बांधेगा, है ना। लेकिन वो माया के कारण उसका जो जो ज्ञान है वो चला जाता है, इसलिए उसको वो रुचिकर लगता है, वो मांस खाना उसको अच्छा लगता है, मछली खाना उसको अच्छा लगता है, लेकिन अंततः का तो परिणाम ये आता है कि यू सफर। दैट्स द थिंग, सड़ी हुई चीज खाना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, हेल्थ के रूप में देखा जाए या जनरल कॉमन सेंस के रूप में देखा जाए सड़ी हुई चीज कोई नहीं खाता है। वही सड़ी हुई, देयर मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट, कि जैसे समझ लो सड़ा हुआ मछली खा लेता है, लेकिन अगर आप उसको सड़ी हुई सब्जी दोगे तो नहीं खाएगा, सड़ी हुई मछली खा लेता है, तो एक्चुअली सेम ही है, तो देयर इज नो वे एंजॉयमेंट। हो सकता है कि आप उसको शुरुआत में इतना स्ट्रांग डोज ना दो, लेकिन आप उनको असलियत बताओ। इसलिए कई बार हम लोग क्या करते हैं कि उनको पॉजिटिव के प्रति अधिक एंगेजमेंट के ऊपर बल देते हैं निष्काम कर्मयोग के माध्यम से, ताकि उनके एक्टिविटीज को चेंज ना कर दे अचानक से। अचानक से एक्टिविटी चेंज करने का प्रयास करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो एक्टिविटी को चेंज ना करे, अपनी जो करता है उसको छोड़े नहीं। अच्छा, फिर धीरे 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 जब भक्तों की संगति आती है माला का जब करता है, फिर उसको अपने आप से यही सब प्रश्न आपको पूछेगा, फिर अगर आप उनको बताओगे पुरुष के विषय में प्रकृति के विषय में तो वो समझ पाएगा। सो प्रभुपाद कहते हैं कि समटाइम जगत इज नॉट मिथ्या, द एंजॉइंग स्पिरिट इन विद इन अस इज मिथ्या, यू कैनॉट बी एंजॉय, भूतवा भूतवा प्रलियते, प्रकृति इज फैक्ट मैनिफेस्टेशन इज टेम्पररी इज नॉट फॉल्स, ये टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है कुछ समय के लिए प्रकट हुआ है लेकिन ये मिथ्या नहीं है। प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, आई मीन आई लव दिस एग्जाम्पल। कभी आप क्रोध में आ जाते हो, अर्थात आप कुछ लक्षण प्रकट करते हो राइट, आपकी आंखें बड़ी हो सकती है क्रोध में, आपका जो चेहरा होता सनक जाता है, आपकी आवाज शायद बड़ी हो जाती है, कभी आप कांपने लगते हो या फिर आपका फेस लाल हो जाता है, ये सब लक्षण है क्रोध का। लेकिन ये सारे लक्षण आपके भीतर ऑलरेडी है क्रोध का, जैसे क्रोध ही होना गुस्सा आना, ये लक्षण आपके अंदर है लेकिन वो कभी प्रकट होता है कभी नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर तो है ही ये क्रोधी होने का लक्षण। तो कभी कोई व्यक्ति कामावेश में आ जाता है, काम से वश में आ जाता है, कामातुर बन जाता है। तो कामातुर बनना उसके अंदर है, लेकिन कभी प्रकट होता है कभी नहीं होता है। कभी एकदम आप वश में आ जाते हो, कभी वश में नहीं आते। Prabhupada is saying the same thing. Sometimes you become passionate. Passionate is not new thing. It appears, sometimes disappears. That is prakriti. The fact is that sometimes manifests, sometimes not manifests. दूसरा एक example Prabhupada दिया है, cloud का, बादल। बादल कभी बनता है, कभी बिखर जाता है। और बादल कभी शेप लेता है, कभी शेप तोड़ देता है। बादल आता है, चला जाता है, लेकिन बादल जब आता है तब वो असली होता है, नकली नहीं होता है बादल। और लेकिन बादल का अस्तित्व नहीं है, वो हमेशा रहता नहीं है ना। बादल जो है वो परिवर्तन विकार वाला है, प्रकृति भी ऐसी है, वो विकार वाली है प्रकृति, उसमें विकार आते रहते हैं। हम लोग छोड़े देते हो कुछ ऐसी, आई रिमेम्बर कुछ बताए, वो एक छह मूर्खों की स्टोरी आती थी हमारे पास, हमारे लेसन आता था गुजराती में, शहर कहीं और, सिक्स फोल्ड्स ऐसा करके आता था। हालांकि उसमें से एक ऐसा था कि आकाश में बादल को देख करके अपने अंगूठी छुपा देता है, ये बीच के ऊपर। बोले कहां पर छुपाई थी? बोले वो इस बादल के नीचे छुपाई है। फिर वो जाता है स्नान करने के लिए, और स्नान करके आता है और पूरा समय अंगूठी ढूंढता रहता है बीच में, इधर खोद देता है, उधर खोद देता है, इधर खोद देता है। कोई आके उसको पूछता है, बोले क्या कर? बोले मैंने अंगूठी छुपाई थी। बोले कहाँ छुपाई थी अंगूठी? बोले ये बादल के नीचे छुपाई थी, इस बादल के नीचे अंगूठी छुपाई थी। तो बादल जो है वो विकार वाला है, वो परिवर्तन होता रहता है उसका, ऑलवेज ऑलवेज चेंजेस। लेकिन प्रकृति इसी तरह से कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट हो जाती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्रकृति मिथ्या है, जैसे बादल को आप नहीं कह सकते कि बादल मिथ्या है। प्रकृति पुरुषम चाहिए विद्या अनादि, ये शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है, लेकिन कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट हो जाती है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो इसको लेकर के कोई प्रश्न है? या कंटिन्यू फर्दर टेक्स्ट नंबर 21 से। Any question in this? Okay. So, okay. So next, text number 21. Charging nikal.
Charging.
Nikal lo. Okay. Text number 21.
अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार बांधता है?
ओके,
21 प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है।
हाँ, फिर से तीसरे चौथे अध्याय में हम कर्ता की बात करते थे, पता है आपको, याद है? कर्ता कौन है? प्रकृति करता है, गुण करता है, जीव करता है, या भगवान करता है, कौन करता है? तो इसके विषय में हमें सबके ओपिनियन थे। कई बार हम कहते हैं प्रकृति के तीन गुण करता है, कई बार हमने कहते हैं कि वास्तविक कर्ता तो परमेश्वर है, कई बार हम कहते हैं कि आत्मा करता है। एक रूप से देखा जाए तो तीनों सत्य थे, तीनों ही सत्य है एक रूप से, लेकिन अधिकतर जो बल है जो हमें प्राप्त होता है कर्ता का, जो जो सबसे मूल जिम्मेदार है वो है आत्मा। सबसे अधिक जो जिम्मेदार है वो है आत्मा, अपने कर्मों का पूरा जिम्मेदारी आत्मा के ऊपर है। क्योंकि मैं खुद ये चेतना सोचता हूं कि मुझे क्या चाहिए। प्रकृति रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है आपकी इच्छा के सामने। आप सोचते हो कि मुझे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि हमें मुझे एक वो गेम आती थी, कौन सी गेम बोलते हैं उसको, वो जो खिलौने आते हैं ना बच्चे के, उसमें से आप कुछ भी बना सकते हो, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। क्या आई फॉरगॉट दैट नेम, क्या बोलते हैं प्लास्टिक का होता है सब, हाँ ब्लॉक्स होते हैं, वो ब्लॉक्स से आप उसको फिक्स करके आप कुछ भी बना सकते हो, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। तो उसी तरह से प्रकृति आपको रॉ मटेरियल देती है आपकी इच्छा के अनुसार, आपको जो चाहिए वैसा शरीर मिल जाएगा आपको, आप अपनी इच्छा करो प्रकृति आपको उसका सहायक करती है, परमात्मा परमिशन देते ओके डू इट, प्रकृति आपको सहयोग करती है कि आप उसको उसका आप जो जैसे चाहे उपयोग करो, लेकिन वास्तविक करता जीवात्मा के रूप में है, जीव इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग एंड एंजॉयमेंट, क्योंकि माया को हमने गलत तरीके से और कृष्ण से स्वतंत्र होकर के माया को आलिंगन दिया है। हमारा प्रॉब्लम एक ही है कि हम कृष्ण से स्वतंत्र होकर के सब कुछ करना चाहते, यही हमारा रूट प्रॉब्लम है, हमारा मूल प्रॉब्लम ही यहीं पर है। इसलिए अगर कर्म को कंसीडर किया जाए तो उसके लिए जो कर्म के लिए अल्टीमेटली हमारे कर्म पहले के कर्म जो है उसको देख करके फिर प्रकृति आपको दूसरा एक अच्छा शरीर देती है उस कर्म के आधार पर, और वो कर्म के आधार पर आपको जो आपने इच्छा थी वो आपको प्रोवाइड किया, और ये प्रोवाइड करने का परिणाम क्या आता है, मोर सफरिंग और दुखी होने का, ये समस्या। एक्चुअली चैप्टर में अभी का जो ये सेक्शन है वो प्रकृति के साथ आत्मा संसर्ग में जो आता है ना, प्रकृति के साथ आत्मा जो संसर्ग में आता है और दुखी होता है, इसका वर्णन आ रहा है यहाँ पर, इसी बात को हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो प्रकृति वास्तव में सारे भौतिक चीजों के अंतिम कारण मानी जाती है, लेकिन आत्मा का सुख और दुख का पूरा जिम्मेदारी आत्मा का है, प्रकृति का नहीं है। हालांकि प्रकृति सब कुछ देती है आपको, कारण वो बनती है, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार। जैसे प्रपद तात्पर्य में कहते हैं, ये लेक्चर में जगह का है कि हाउ फुलिश वी आर टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी एंड सुख दुख हैप्पीनेस इज ऑलरेडी फिक्स्ड, हाउ फुलिश वी कैन पाने अर्जुन, दैट्स कॉल्ड एक्शन, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन, हम अपनी सिचुएशन को अच्छा करना चाहते हैं, मोर कंफर्टेबल ऐसे। जनरली हम सबका लाइफस्टाइल में यही देखा जाता है, सब लोग कंफर्ट इंप्रूव करना चाहते हैं बस सभी जगह से, लेकिन प्रभुपाद एक जगह स्पष्ट बता दिया यहाँ लेक्चर में, जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक कष्ट है, ये बोलो मत, कुछ भी कर लो आप, कितना भी कंफर्ट इंप्रूव कर लो कुछ नहीं होने वाला, लाखों रुपए खर्चा कर लो कुछ नहीं होने वाला, कष्ट आपको तभी मिलने ही वाला है। फिर भी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस, सुख का कोई प्रश्न ही नहीं है, और फिर भी हम ऐसा मान रहे हैं कि हम सुखी है, तो इसको बोलते हैं माया। एग्जाम्पल सेम है सुअर का, प्रभुपाद कहते हैं सुअर मल खाता है स्टूल, और ये सबको, हम सबको पता है कि किसी भी दृष्टिकोण से ठंडा गर्म हो रहा है, ठंडा कर लो, ठंडा लगे तो बोल देना फिर गर्म कर लेंगे। सो स्टूल जो है वो किसी भी दृष्टिकोण से खाने योग्य नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं कि एक हमारे एंगल में नहीं है दूसरे के एंगल में, ऐसे कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा कि जो स्टूल खाने को पसंद करेगा, नो कोई बुद्धिशाली व्यक्ति नहीं खाएगा ये, बट सुअर को अच्छा लगता है, और उसको लगता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं और उसके लिए वो एंजॉयमेंट है और उसको उसका उसको गर्व है, उसका अभिमान है उसको कि उसको जितना स्टूल मिल रहा है बाजू वाले सुअर को उतना स्टूल नहीं मिल रहा है, उसका उसको अभिमान है। वो शायद मनुष्य को देखेगा कि वो पिज्जा खा रहा है या सीधा हलवा खा रहा है पाइनएपल का, लेकिन वो सोचता बेचारा कितना दुखी है, देखो हलवा खा रहा है, मैं कितना सुखी हूं, देखो स्टूल खा रहा हूं। ये दिस इज द प्रॉब्लम, ये एंजॉयमेंट, ये इसको बोलते हैं इल्यूजन, माया। इसको बोलते प्रक्षेपात्मिक आशक्ति, जो आपका ज्ञान जो है वो कवर कर लेते प्रक्षेपात्मिक आशक्ति। मनुष्य प्रॉपर एग्जाम्पल, ये फीस वाला एग्जाम्पल इसमें दिया था, आपको इज थिंकिंग इज एंजॉयिंग, फिश खा रहा है और उसको लगता है कि वो एंजॉय कर रहा है। माया मस्ट मेक हिम फॉरगेट दैट इट इज ईटिंग द मोस्ट रॉटन थिंग, अदरवाइज हाउ कैन ईट। माया अप्रत ज्ञान, इसलिए वो बोल देता है कि सो नाइस। जैसे कि अगर आप स्टूल में से, लैब में जो स्टूल होता है, आप लैब में जाओ, स्टूल में से कोई कीड़ा, वो कीड़े को अगर आप बाहर निकालते हो और छोड़ दो तो कीड़ा क्या करेगा पता है? वापिस स्टूल में चला जाएगा। आपने उसकी सहायता की कि गंदगी में से उसको निकाल लो, लेकिन वो कीड़ा क्या करेगा? वापिस स्टूल के अंदर चला जाता है। ये हमारी समस्या है। कई बार हमारे गुरुजन हमें उस गंदगी से बाहर निकालते हैं, वैष्णव लोग, लेकिन हम फिर वापस उसी में चले जाते हैं, उसी गंदगी के अंदर। हम सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, हमें निकालने का प्रयास किया जाता है इसमें से, लेकिन वापस उस गंदगी के पास चले जाते हैं, वापस हमारी वो स्थिति आ जाती है। सो दैट इज मोस्ट अबोमिनेबल। So this is consequences of all forgetfulness. There are varieties of living entities, living body. Narottam Das Thakur bolte hai, nana yoni brahmana kare. Sab pure alag alag yoniyon mein ghumte rehte hai. There are cockroaches in the commode. Commode mein cockroach hote hai. Kya bolte cockroach? Whatever, cockroach. बंदा, हाँ। सो वो ऐसा सोच रहा है कि ये लोग बेचारे कितने मूर्ख है, इतना अच्छा जगह छोड़ करके ये बाथरूम के बाहर रहते है, और मैं देखो कितना सुखी हूँ, मैं कमोड में रहता हूँ। ही इज थिंकिंग लाइक दैट। ट्री स्टैंडिंग फॉर सेवरल थाउजेंड्स इयर्स, हजारों साल तक एक पेड़ खड़ा रहता है एक कोने में, एक स्थान पे, और वो भी यही सोचता है कि मैं जीवन का आनंद उठा रहा हूं। He is also thinking like this. So this is going on. So I am pardon for, हमें अपने अपने आप को ये समझना है, माई पोजिशन, आई नेवर टेक माई बर्थ, नेवर डाई, ना अन्यते अन्य माने से, मेरा मृत्यु नहीं है, मेरा जन्म नहीं है। सो ये ही मेरा सौभाग्य है कि मैं इसका उपयोग करके वापिस अपना जन्म को रोक सकता हूँ। दिस बट आई डू नॉट विश टू टेक द नोटिस ऑफ देम एंड दैट इज कॉल्ड माया। इसको माया बोलते हैं कि हम इतना इसका नोटिस नहीं, इसको हम स्वीकार नहीं कर, समझ नहीं पाते, दैट इज कॉल्ड माया। सो तो स्ट्रक्चर 21 था। प्रकृति जो है वो केवल माध्यम बनती है, माध्यम। और प्रकृति में जैसे हम प्रकृति के जाल में कभी कभी इस तरह से अपने आप को, जब उसके साथ प्रकृति के साथ अपना पहचान करने लगते हैं, तो सब कुछ तीन गुणों के संसर्ग में आ जाता है। जैसे आप समझ लो कि कोई मूवी देख रहे हो तो तीन घंटे तक आप अपना अस्तित्व खो देते हो, अब तीन घंटे तक आप देखते रहते हो और उसके अंदर लीन हो जाते हो, कभी हंसते हो कभी रोते हो, इमोशन आते हैं आपकी, लेकिन आप उसके अंदर लीन, आपका अपना अस्तित्व आप खो देते हो। इस तरह से वो सभी उसके उसके वो आपको एक्चुअली इल्यूजन क्रिएट करती है। जैसे एक वॉल होती है तो वॉल के ऊपर कुछ भी नहीं है, आप समझ लो कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो कि एक थिएटर है बड़ा, उससे पहले तो वॉल के ऊपर प्रोजेक्शन होता था, आजकल तो शायद एलईडी यूज करते पता नहीं क्या है, पहले तो वॉल के ऊपर प्रोजेक्शन होता था। तो आप समझ लो कि इतने सारे लोग, अगर किसी ने लाइफ में कभी थिएटर कभी देखा ना हो, अगर वो पहली बार थिएटर में चला जाए और इतने सारे लोग को बैठा हुआ देखे और सामने दीवार देखे तो क्या सोचेगा क्या सोचेगा, बोले मूर्ख ये सब लोग क्या कर रही है, इधर भी इडियट मानेंगे सब लोग, बोले क्या कर रही है लोग, किस की दीवार के और मुंह रख के बैठे, दीवार के ऊपर क्या है, जब तक प्रोजेक्शन शुरू नहीं हुआ तब तक क्या है, कुछ नहीं है, इस एम्प्टी वॉल, कुछ नहीं है। और जैसे ही प्रोजेक्शन शुरू होता है कोई हंसने लगता है, कोई रोने लगता है, लेकिन देख किसको रहे, एक्चुअली दीवार को देख रहे, तो वो एक्चुअली भ्रम ही और कुछ नहीं, इट्स ऑल इल्यूजन। उस दीवार के ऊपर प्रोजेक्शन हो गया तो उसको कुछ चित्र दिखने लगा, और जो चित्र देखा उसको देख करके उसकी इमोशनल क्रिएट हुई। वैसे ही वापिस जैसे मूवी खत्म होती है, जिसको देखकर वो हंस रहा था, जिसको देख के वो रो रहा था, वहां दीवार आ जाती है, वापिस चलो भाई वापिस खड़े हो जाओ अपने अपने घर। That's what you know. What you spent? You spent your time. You spent your money. You spent your emotion. You spent your energy. And you spent your culture. Everything you spent on it. And what you got? Nothing.
मैं जब छोटा था तो मैं क्रिकेट बहुत देखता था, तो मैं वो टेस्ट मैचेस 8-8 घंटे के हो गए
हैं,
तो मेरे मेटरनल अंकल थे, वो मुझे बता रहे थे, वो यूएस के थे, वो मुझे बता रहे थे कि आप लोग 8 घंटा कैसे क्रिकेट देख सकते हो, मतलब कितना स्पेंड कर सकते हो, तो मैं मुझे उन पे हंसी आ रही थी, अभी मुझे लग रहा है कि वो सही बोल
रहे हैं। That's illusion. ये है माया, और वो तो हम 3 घंटे का मूवी बता रहे थे, एक्चुअली हमारी लाइफ ही इस तरह से चल रही है मूवी की तरह, जहां पर हमें नहीं रोना चाहिए उधर रोते हैं, और जहां हमें नहीं हंसना चाहिए उधर हंसते हैं, उस तरह में आप समझे, ऐसी खोली। और जो वास्तव में कृष्ण के संबंधित जो इमोशन है कृष्ण भक्ति के, उसकी चिंता नहीं करते, सो दैट्स अवर प्रॉब्लम। जैसे कोई स्विमिंग पूल में अगर आप जाओगे तो आप पानी में डुबकी लगाओगे तो आपने कुर्ता पहना है, धोती पहनी है, घड़ी है, आपका बाल है, तो सभी को गीला होगा ना, एक थोड़ी गीला होगा, सब कुछ गीला हो जाएगा उसमें, एवरीथिंग विल बी कंटेमिनेटेड बाय मटेरियल नेचर व्हेन यू आर ट्राइंग टू लॉर्ड इट ओवर इट। ओके नेक्स्ट श्लोक। यस
21 में जैसे प्रकृति बताया और उसके रेफरेंस में पुरुष बताया और उसका पुरुष का जैसे जीवात्मा कॉन्शियसनेस बताया है, तो ये प्रकृति के कंपैरिजन में बताने के लिए पुरुष बताया है, बाकी हम जैसा बताया हम सब प्रकृति है।
यस
ऐसा ही है ना।
यस अर्थात वो पुरुष बनने का प्रयास कर रहा है। नेचर इज सेड टू बी द कॉज ऑफ ऑल मैटर कॉजेज एंड इफेक्ट्स वेयर द लिविंग एनर्जी इज अ कॉज। यहाँ पर संस्कृत शब्द पुरुष उपयोग हुआ है, लेकिन प्रभुपाद इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि यहाँ पर वो परमात्मा की बात नहीं हो रही है, यहाँ आत्मा की बात हो रही है, और इसको पुरुष इसलिए कहा गया है क्योंकि वो भी इस शरीर का क्षेत्रज्ञ है और इस शरीर को भोग करने का प्रयास कर रहा है वो,
एक इंडिपेंडेंट
आइडेंटिटी भी है। तो इस तरह से ये पुरुष के रूप में, लेकिन एक्चुअली इट इज फॉर लिविंग एंटिटी, प्रभुपाद हैज वेरी क्लियरली मेंशनड इट, इज द कॉज ऑफ द लिविंग एंटिटी इज द कॉज ऑफ वेरियस सफरिंग एंड एंजॉयमेंट इन दिस वर्ल्ड। इसको आप अगर परमात्मा के साथ ज्वाइन करते हो तो आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा कि हाँ हो सकता है, बट रियालिटी नहीं है, क्योंकि जिस भगवान जिस संक्षेप में बात कर रहे हैं जिस विषय में संबंध में, देयर इज आत्मा, दिस ऑल टेक प्लेस इन अदर सेंस, ये पुरुष के संरक्षण में होता है, वो प्रकृति और आत्मा दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो होता है वो परमात्मा के सैंक्शन में होता है, जिसको नेक्स्ट श्लोक में भगवान 22 में बताएंगे किस तरह से होता है।
इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है।
ये श्लोक जो है ना, ये परिभाषा सूत्र के नाम से पहचाना जाता है। परिभाषा सूत्र, परिभाषा सूत्र इसलिए कहा जाता है कि 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक जो थर्ड पार्ट है भगवद गीता का, उसका जो सीड श्लोक का बीज श्लोक का जो है वो ये है,
13-18
का परिभाषा सूत्र अर्थात हाँ परिभाष्य परिभाषा सूत्र। वो आगे था, पहले में था, लेकिन ये 13-18 में ये परिभाषा सूत्र के रूप में ऐसे देयर आर फ्यू लाइक दिस, लेकिन ये श्लोक जो है इसके अंदर सारी बात को सूत्र के रूप में बता दी गई है कि एक ही श्लोक के अंदर सारा 13वां चैप्टर देख लो, 14वां देख लो, 15वां देख लो, 16वां देख लो, इस सब का जो मूल बात है वो सब इसमें बीज के रूप में सीड की तरह इसके अंदर इसी श्लोक के अंदर डाल दी गई है। प्रकृति स्थ पुरुषो ही पुरुष प्रकृति स्थ ही भोंगते प्रकृति जान गुणा। तो यहाँ पर आत्मा को प्रकृतिस्थ, प्रकृतिस्थ का अर्थ होता है प्रकृति में स्थिर, प्रकृति में संसर्ग में आने के कारण पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोंगते, और क्या करता है वो भोग करने का प्रयास करता है, भोग तो पाता नहीं तो भोग करने का प्रयास करता है, भोंगते प्रकृति, प्रकृति को भोग करने का प्रयास करता है। और ये प्रकृति किससे बनी हुई है, जान गुणान, तीन गुणों से, जन जन्माद जैसे होता है ना, जन जन जान जो है शब्द वो प्रकृति के जन्म से आता है, जन्माद जैसे तो जैसे जन जान प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न हुआ वो भोग करता है प्रकृति को, प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संघर्ष, और उस तीन गुणों का संग करने से गुण संग, जैसे हमारी हम लोग कहते हैं साधु संघ कि साधु संघ करना है, भक्तों का संघ करना है, राइट, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं गुण संग, प्रकृति का प्रकृति कारणम गुण संघर्ष, कभी रजोगुण का संग करते हैं, कभी तमोगुण का संग करते हैं, कभी रजोगुण तमोगुण का संग करते हैं, इस तरह से प्रकृति कारण गुण संघर्ष तदा रजस्तमो भावा काम लोभादेश। हमारी समस्या क्या है कि हम लोग रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में काम लोभादय काम क्रोध लोभ में फंस जाते हैं, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में, कभी हम रजोगुण के प्रभाव में आ जाते तो हम भोक्ता बनना चाहते हैं, हम सुख भोगना चाहते हैं, और तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं तो कभी हम अज्ञानता प्रस्तुत दिखाते हैं, कभी मालसी बन जाते हैं, सोते रहते हैं, तो इस तरह से कारण गुण संघर्ष सदस्य योनि जन्मसु अच्छी या बुरी योनि का निर्माण इस तरह से होता है, किस तरह से भोंगते प्रकृति जान गुणा, क्योंकि वो प्रकृति के तीन गुणों को भोग करने का प्रयास करता है और इस तरह से गुणों का संगति करता है, और जैसे गुणों का संगति करता है वैसे तुरंत उसको उसी उस प्रकार की योनि उसको प्राप्त होती है। वो आगे जो परिभाषा सूत्र हमने चर्चा किया था ना वो ये था कि यू गॉट दैट श्लोक, व्हाट इज दैट श्लोक,
जन्म कर्म च
वेदेभ्यः, अच्छा इसको ही परिभाषा सूत्र बोलते हैं। फिर एक फेमस श्लोक वो है उत्क्रामंतम सितम वापी,
कौन सा चैप्टर
विमुडा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा,
15वें अध्याय
यू कैन फाइंड आउट विमुडा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा उत्क्रामन्ति सितम वापी भुञ्जान एव, यू कैन चेक दिस श्लोक गुणान्वितम, सेम चीज वो भी तीन गुणों, उसका मतलब किस तरह से जन्म होता है प्रकृति मनुष्य का किस तरह से प्रकृति के संसर्ग में आता है, उसके गुणों का भोग करता है और किस तरह से मर जाता है, ये उसका मतलब सितम वापी गॉट दैट स्टोरी
याद है
भगवद गीता के अंत में होगा श्लोक का समरी, इंडेक्स होता है श्लोकों का इंडेक्स। विमूढ़ानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। वो भी आया नहीं हमारे पास पढ़ने में, बट दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस श्लोक।
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति पश्यन्ति
ज्ञानं।
मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है।
या तो प्रकृति के संसर्ग में किस तरह से व्यक्ति आता है वो तभी समझ सकता है, कारण गुण संघर्ष सदस्य जीवन जन्म से। तो प्रकृति पुरुष पुरुष प्रकृति स्थो ही, भगवान ने सातवें अध्याय में जीव को सबॉर्डिनेट एनर्जी के रूप में बताया था, तो वो यहाँ पर जब इल्यूजन के माया के प्रभाव में आकर अपने आप को पुरुष मानता है, वास्तव में वो पुरुष है नहीं, वो अपने आप को पुरुष मानता है, वो इमेजिन करता है अपने आप को, इसलिए बोलता है पुरुष प्रकृति स्थो ही। और उसका फोकस क्या होता है, असंभव कार्य को करना, प्रकृति के तीन गुणों को भोग करना, वो हो ही नहीं सकता, प्रकृति का भोग करना चाहता वो हो ही नहीं सकता, वो प्रकृति के गुणों को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करता है, और इसके कारण गुण संगोष्य, और इसके कारण ट्रैप में फंस जाता है सदसद जीवन जन्म से। तो वो आत्मा होने के बाद भी अपने आप को प्रकृति बनाने का प्रयास करता है या पदार्थ बनाने का प्रयास करता है, दैट्स द प्रॉब्लम। प्रॉपर लेक्चर में कहते हैं यू हैव कम आउट थ्रू द मदर, दैट्स कॉल्ड योनि। व्हाई इज डिफरेंट मदर, अलग अलग प्रकार के माताएं, अलग अलग प्रकार के शरीर, अलग अलग प्रकार की योनियां क्यों होती है, कारण गुण संघर्ष। 81 क्वालिटीज ऑफ मटेरियल नेचर, तीन गुणों को अगर मल्टीप्लाई कर लो तो ऐसा तो बहुत सारे होते, लेकिन आपको अलग अलग प्रकार की सुविधा देते, शरीर देते, 84 लाख प्रकार की सुविधा देते। प्रभुपाद के लेक्चर में बताए वेर इज द साइंस, you have botanical garden, but do you know the science, why there is a tree, why there is an ant, why there is a bird, why there is a man, you have no knowledge, nahi jante, badi badi universities hai lekin in log ko nahi pata hai why there is a man, why there is a bird, they don't know about this material science, iske sab mein they may speculate perhaps maybe but no absolute knowledge. You have no knowledge. This material school, colleges, universities are simply producing animal life. Ye keval pashu hai. Why are you forced to accept certain type of body? Kisi sharir aapko particular koi sharir aapko grahan karne ke liye aapko badhya kyun kiya ja raha hai? You don't know about it. You don't have answer on it. You may be a PhD, you may be your MBA, you may be whoever, but you don't know about it. फिर आठवें अध्याय में भगवान ने कहा है यद यद यम यम वापी स्मरणा, जो जिस भाव से शरीर त्याग करता है उसको उसी भाव से शरीर प्राप्त होता है. सो इफ यू डोंट एसोसिएट विद दिस मटेरियल नेचर देन यू डोंट गेट दिस बॉडी. हाउ कैन गेट आउट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड? माम चयो अव्यभिचार है ना, भक्ति योग है ना सेवते सगुणान समुदान. वो लोग इस संसार में से तीन गुणों को पार कर जाते हैं. कौन लोग? माम चाहिए अव्यभिचारण भक्ति योग है ना, जो लोग मेरी अव्यभिचारणी भक्ति से जुड़ते हैं मुझ में, वो लोग इससे पार हो जाते हैं. प्रॉपर एग्जांपल दे रहे, जैसे टेंपल है, तो अभी टेंपल जो है उसमें भोक्ता कौन है? ये हमारा राधा गोविंद मंदिर है, उसमें आगे मंदिर है, दो साइड फूड कोर्ट है, एक साइड एक रेस्टोरेंट है, पीछे आपका गेस्ट हाउस है, दो दो गेस्ट हाउस है, राइट, ओपन खुला जगह है. ये सारी एरिया का भोक्ता कौन है? राधा गोविंद जी. सो अवर बिजनेस टू प्रिपेयर नाइस आइटम्स एंड ऑफर इट टू कृष्णा, ही इज द एंजॉयर, वो भोक्ता है. He's enjoying. And his position is enjoy and we are servants. We claim to become servant of the servant of the servant of the servant of Krishna and that is our position. यही हमारी स्थिति है कि हम कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक बन सके. तो अगर वो एक्सेप्ट कर ले ऐसा तो भी बहुत है, वो भी हमारा सौभाग्य माना. मायावादी लोग कहते नहीं, आई एम गॉड, सोहम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, सो हम. मायावादी लोग ऐसा बोलते हैं, दैट इज देयर फिलोसॉफी एंड अवर फिलोसॉफी इज ऑल्सो सो हम. हमारा भी फिलोसॉफी सेम है, लेकिन आई एम द सेम क्वालिटी नॉट द सेम पर्सन.
हम लोग का तो रुझी है सर्वेंटो हम,
सर्वेंटो हम, सो हम, या सर्वेंटो हम. तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि गुण की दृष्टि से हम एक हो है, एक ही है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग है. वो अलग व्यक्ति, मैं अलग व्यक्ति हूँ, उनका गुण मेरा गुण एक जैसा है क्योंकि मैं उनका सागर का बिंदु हूँ.
मैं सोच रहा हूँ कि गुण के जो मतलब जो क्वालिटेटिव भी नहीं है.
अगर आप सिद्ध अवस्था प्राप्त करते हो तब आपको क्वालिटेटिव
शायद हो जाती है, लेकिन क्वालिटेटिव भी नहीं है. मतलब उसका थोड़ा थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि वानगी जैसे छोटी छोटी करके हल्की हल्की सी कर दी, उस टाइप की.
yes.
कंप्लीट क्वालिटी वाला ऐसा नहीं.
कंप्लीट क्वालिटी तीन है, शाश्वत, चेतनामय और आनंदमय, ये कंप्लीट क्वालिटी है.
क्योंकि सेवक के लिए इतना जरूरी है.
यस, सच्चिदानंद.
सेवक लगातार रहेगा तभी सेवा कर पाएगा.
तो यही तीन क्वालिटी है हमें जो एक कॉमन है कृष्ण में और हमें कॉमन है.
बाकी बहुत सी
उनकी अनंत क्वालिटीज है, वो नहीं हो सकता, वो कृष्ण के समान. तो ये तीन क्वालिटी के साथ,
इसीलिए ये कहना भी पूर्णतः सत्य नहीं है, पार्शियल ट्रुथ है कि वो क्वांटिटी में बड़े हैं, क्वालिटी सेम है.
नहीं, जब हम क्वालिटी की बात करते तो हम भगवान की जो छह सड़े सोरे की क्वालिटी बात नहीं करते, केवल हम ये तीन चीज की बात करें, सच्चिदानंद की, बस उसी क्वालिटी की बात करें, क्योंकि वो मूलभूत क्वालिटी है कृष्ण की.
चेतन,
चैतन्य, शाश्वत,
हाँ,
और आनंदमय, आनंदमय, सच्चिदानंद, ये उनका मूल है और हम भी वही है सच्चिदानंद.
और यही मायावादियों का ब्रह्म का यही स्वरूप
है. हाँ, वो ब्रह्म का स्वरूप यही है, लेकिन वो उसमें आनंद है ही नहीं. कौन सा आनंद? बिना कोई देखे या देखोगे नहीं, खाओगे नहीं, चलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, क्या आनंद मिलेगा आपको? उनके लिए लीन हो जाना आनंद है.
विचारों का
जस्ट इमेजिनरी प्लेजर. So because we are surrendered to Krishna, we are confident about eating and sleeping. हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें खाने को क्या मिलेगा और हमें सोने कहाँ मिलेगा. हमारी समस्या नहीं है क्योंकि हम भगवान के शरणागत है. We don't bother about it. ये हमारा problem नहीं है. लेकिन हमारा problem जब हम दीक्षा लेते हैं, माला का जप करते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, तो हमारा problem फिर वो नहीं रहता है कि हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा. हमारा problem क्या है कि मैं प्रामाणिक भाव से कृष्ण की सेवा कैसे कर पाऊंगा, ये हमारी प्रॉब्लम है, उसकी चिंता होनी चाहिए. दिस इज अवर प्रॉब्लम. बकलों की चिंता, भक्तों को भी चिंता होती है, लेकिन भक्तों की चिंता ये होती है कि मेरे, मैं अभी तक भक्त नहीं बन पाया, अभी तक मैं कोई कृष्ण का सेवा नहीं कर पाया, थोड़ी बहुत सेवा अगर मुझसे हो जाए तो भी सफल हो जाऊं, ये चिंता है उनकी। किस तरह से मेरा हृदय स्वच्छ होगा, क्यों अभी तक मेरे मन में से आकर्षण अभी चला नहीं गया, दीज आर द प्रॉब्लम्स वी हैव इन आवर लाइफ, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। सो यू कैन लिव इन मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अगर आप इस तरह से भगवान की इच्छा के अनुसार अगर आप भगवान की सेवा में जुड़ते हो तो आप, देयर इज नो प्रॉब्लम, देन आप अहमदाबाद में नहीं हो, फिर आप वैकुंठ में हो। ओके, टेक्स्ट नंबर
23। जो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है।
अभी यहाँ पर क्लियर आ गया कि डिफरेंस क्या है जीवात्मा का और परमात्मा का। अभी यहाँ पर जो प्रकृति, वो प्रकृति स्थ था और ये प्रकृति से पर है, ये पुरुष वो प्रकृति में स्थिर नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर, वो वास्तविक पुरुष है, वो स्वामी, वो सुप्रीम प्रोप्राइटर है और ओवरसियर परमिटर अर्थात उपदृष्टा हनुमंता, वो केवल उपदृष्टा है, श्लोक वही है, उपदृष्टा हनुमंता। हू यू नीड चेयर, यू आर कंफर्टेबल नाउ, यू हैव, वी हैव मेनी चेयर्स। तो उपदृष्टा हनुमंता, तो उपदृष्टा, उपदृष्टा का अर्थ होता है कि उनको भोग करने का कोई इच्छा नहीं है, वो कर्म को भोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग कर्म का भोग करना चाहते हैं, हम प्रकृति का भोग करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू एंजॉय, बट दिस ओवरसीयर, दिस उपदृष्टा हनुमंता, उनको भोग करना नहीं है, वो भोग करना नहीं चाहते। अनुमंता, अनुमंता का अर्थ क्या होता है, परमिशन गिवर, परमिशन देते हैं, आपको परमिशन देते हैं। सो परमात्मा और जीवात्मा का ये संबंध आप देख सकते हो, दोनों ही क्षेत्रज्ञ है, लेकिन परमात्मा को पुरुष परह एंड प्रकृति स्थ, दूसरा एक ये है पुरुष परह मीन्स परमात्मा और पुरुष प्रकृति स्थ वो है जीवात्मा, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणा, ये प्रकृति पुरुष प्रकृति स्थ और ये है पुरुष पर, ये पर पुरुष है। सो प्रपद तात्पर्य में कहते हैं, मे बी वुड लाइक टू रीड, द फैक्ट इज दैट एवरी लिविंग एंटिटी इज इटरनली पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी इंटीमेटली रिलेटेड एज फ्रेंड्स।
तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र स्वरूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है, लेकिन जीव में परमेश्वर आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है, जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है, अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है।
Yes. So, Prabhupada इस क्वेश्चन में कहते हैं एक लेक्चर में कि परमात्मा जो है उपदृष्ट अनुमंता, जैसे एक बार एग्जाम्पल भी कई बार दिया जाता है पैरट का, पक्षी बर्ड तोता या कोई पर, दो एक वृक्ष पर दो समान वृक्ष है, एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी है और एक पक्षी है जो फल खा रहा है और दूसरा पक्षी है उसको फल खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो उसका साक्षी है, वो उधर बैठा है देख रहा है। तो परमात्मा जो है वो अनुमंता और उपदृष्टा, उपदृष्टा वॉचिंग एवरीथिंग, सब कुछ। जैसे मैं आज जितना झूठ बोला, ओके 12 झूठ बोलता है कौन रोज आज सुबह मैंने एक आर्टिकल में देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अभी का जो है उसका रोज का 12 झूठ बोलता है डेली 12 लाइज इज सेइंग। तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि व्हाई काउंटेड, दैट मींस 12 से ज्यादा ही होना चाहिए, व्हेन यू कैन काउंट 12 दैट मींस दैट मस्ट बी मोर देन दैट, यू नो 12 झूठ बोलता है रोज का। सो
इंडियन पॉलिटिशियन से फिर भी कम होता
है। So, you feel cold? ठंडा हो रहा है? गिव पानी दो, अंदर से दो, get some water from inside. और किसी को भी चाहिए वाटर? माता आप लेके आइए कुछ, थोड़ा और पानी लेकर आइए, एनीबडी एल्स कैन टेक। सो उपदृष्टा
तो उसमें कोई आदमी निकलता है, उसको ट्रायल होता है जैसे, तो कोई चीज छुएगा तुरंत फंस जाएगा वो।
yes.
या वहाँ पे छोटा सा पटाखा पड़ेगा, मतलब उसकी जगह बम फट सकता है।
yes.
तो प्रकृति भी ऐसे ही लगता है कि इसमें जैसे कोई चीज है, उसे हमने जैसे ही छुई बस पकड़ लिया।
वैसे ट्रैप ट्रैप
ट्रैप है, एक्चुअली दूबी ट्रैप टाइप का है,
इसे ट्रैप
फंस गए और उसके बाद फिर निकल नहीं सकते बाहर।
यस, वो फिर आप अपने आप से नहीं निकल सकते, आपको किसी को निकालना पड़ता है, कोई आके निकालेगा आपको। संभल यश टू कम, तो चिपक जाता है वो उसका, तो कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे कोई इलेक्ट्रिक वो लाइव वायर होता है, लाइव केबल होता है, उसको छू लिया तो आप चिपक जाते, तो आप अपने आप से नहीं निकल सकते, कोई दूसरा व्यक्ति आता है लकड़ी लेके आपको मार के हटाता है, तब भी आप निकल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी राइट लाइक दैट। So, I was saying about उपदृष्टा means आज आप झूठ बोले, आज आपने गुस्सा किया, आपने कोई गलत काम किया, आपने किसी को गाली दे दी, आपने कोई पाप का कोई काम कर दिया, ऐसा कुछ भी काम किया, एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा है, इसी हिसाब से वो सब कुछ देख रहा है, that's उपदृष्टा।
मजबूरी भी तो देखते
हैं वो, हमारी मजबूरी हमारी प्रॉब्लम है, हमारी मजबूरी हमारी आसक्ति है, हमारी मजबूरी हमारा अज्ञानता है। Have some water, anybody can take. So, some more water. बाकी सब भक्तों को भी दे। So. ब्राह्मण यस,
तू तो फिर ये अनुमंता जो है परमिशन गिवर है उसका,
तो प्रभुपाद सेइंग अबाउट दैट परमिशन गिवर क्वेश्चन। सो ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतर्वाणी माया, ही इज डायरेक्टिंग, ही एंड इज लेक्चर में, एंड इज डायरेक्टिंग माया टू गिव यू पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी एंड इज मूविंग विद दैट बॉडी। कौन डायरेक्ट कर रहा है? परमात्मा आपकी सभी चीज को उपदृष्टा करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली भाई इसको ये शरीर चाहिए, उसको ये शरीर चाहिए, इनको दे दो। जस्ट लाइक इफ यू परचेज अ कार, आप अगर कार गाड़ी खरीदते हो तो समझ लो कि आज को आपको नई गाड़ी खरीदनी तो आपके पास सब सुविधा अवेलेबल, लेकिन समस्या क्या होती है कि आपके पास जितना पैसा है उसकी कीमत उसी हिसाब से आप खरीद सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, रॉयल्स रॉयल्स भी ले सकते हो, लिमोजिन ले सकते हो, फिर फिरारी ले सकते हो, BMW या फिर नैनो भी ले सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जो भी लेना चाहे ले सकते हो, लेकिन कीमत उसी हिसाब से रहेगी ना। प्रॉपर हैज गिवन दिस एग्जांपल कि ये आप, सो अकॉर्डिंग टू हाउ मच मनी यू हैव यू कैन परचेज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार। इसी तरह से जिस तरह से आपका जो कर्म है गुड और बैड, उसका प्लस माइनस करके जो बचता है उसमें से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी, आपको वो शरीर मिलेगा। कुछ लोग सोचते कि मुझे क्यों नहीं मिला, तो तुम्हारे खाते में रुपया नहीं था, तुम्हें इतना ही मिला, अब क्या करोगे, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं था तो क्या करोगे, तुम्हें इतना ही मिला, यू गॉट दिस मच, और इतना पैसा खर्चा करके भी गाड़ी आपको प्राप्त होती है, इतना कर्म का उपयोग करके भी शरीर आपको प्राप्त होता है सफरिंग करने के लिए, जस्ट टू सफर, दुख भोगने के लिए, उसके लिए आपको शरीर दिया है। हालांकि शरीर का उपयोग भगवान के लिए होना चाहिए, लेकिन परिणाम यह आता है कि शरीर अब दुख ही देता है। भक्ति में जुड़ने के बाद भी शरीर तो अपना दुख देता ही है, हालांकि आप उसको अनुभव नहीं करते क्योंकि आप शरणागत हो भगवान के, भगवान उसकी सहायता करते हैं भक्त की, लेकिन शरीर जब तक होगा तब तक कष्ट आएगा ही, दुख तो आएगा ही। सो वी आर आत्मा एंड कृष्ण इज परम आत्मा, भगवान जो है वो ईश्वर है, वो हम छोटे ईश्वर है, वो परमेश्वर है, महेश्वर है, वो भोक्तारम क्या आगे सर्वलोक महेश्वरम। तो हम भोक्ता नहीं है, वी कैन नॉट बी भोक्ता, वी कैन बी एंजॉयड, प्रीडोमिनेटेड नॉट द प्रीडोमिनेटर। हम लोग भोग्या है, भोक्ता नहीं, पुरुष भी प्रकृति है, स्त्री भी प्रकृति है, पुरुष कृष्ण है एकमात्र, भगवान एकमात्र पुरुष, और कोई पुरुष हो ही नहीं सकता, इसलिए देयर इज ओनली वन ईश्वर, और इज ओनली वन महेश्वर, दैट इज कृष्ण कंट्रोलर, वो ही इज अ सुप्रीम कंट्रोलर, देयर फॉर इज भोक्ता है, देयर फॉर इज एंजॉयर। कई बार ये एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे समझ लो कि आप जिसको कंट्रोल करते हो उसी को आप भोग कर सकते हो, जिसको आप कंट्रोल नहीं करते उसका भोग क्या करोगे आप, सो इफ यू आर कंट्रोल देन ओनली यू आर प्रोप्राइटर, एंड इफ यू आर प्रोप्राइटर देन ओनली यू आर एंजॉयर। इफ यू आर नॉट अ कंट्रोलर, इफ यू आर नॉट प्रोप्राइटर, देन हाउ कैन यू बी एंजॉयर। बट वॉट वी वॉन्ट, वी डोंट, वी कैनॉट कंट्रोल, we cannot be proprietor but still we want to enjoy, na hum control kar pate, niyaman kar pate kisi vastu ka, samajh lo ye ghar hai, ye ghar mera hai to ye earthquake mein iska ye tutna nahi chahiye kyunki main control kar raha hu na, to ye tutna nahi chahiye, agar ye earthquake mein toot jata hai to iska arth hai ki main controller nahi hu, koi aur control kar raha hai। अभी जो कंट्रोल करने वाला है वो स्वामी हुआ ना, फिर मैं तो स्वामी हुआ नहीं, कि जो कंट्रोल करेगा वो स्वामी है, और जो स्वामी है वही भोक्ता है, जो स्वामी है वही भोक्ता हो सकता है, जो स्वामी नहीं वो भोक्ता कैसे हो सकता है। अगर मेरी प्लेट में जो है वो तो मुझे खाना है ना, मैं आपकी प्लेट में से मैं कैसे खा सकता हूँ। सो द सुपर सोल इज अनुमंता, परमिशन गिवर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट हिज परमिशन, because everything belongs to Krishna, how can you use something without his permission? आप किस तरह से उनकी उनको पूछे बिना आप कुछ चीज, just like a child, child wants to do something ask for permission from father or mother. In my childhood I remember that, कभी प्रभुपाद बताते थे कि मेरे बचपन में कभी मुझे शुशु आती थी, छोटा बच्चा, तो मैं माँ के पास जाता था और माँ को चिल्लाता, माँ मुझे बहुत जोर से सुसु आई है, माँ मुझे बहुत जोर से सुसु, तो माँ बोलती थी तो मैं क्या करूँ, तुम जाओ ना बाथरूम में, मुझे क्यों बोल रहे हो, प्रभुपाद सेड दिस थिंग एंड आई वाज आस्किंग हर परमिशन, माता यू गिव परमिशन देन ओनली आई कैन गो, आप मुझे परमिशन दो कि यस तुम जा सकते हो बाथरूम में, तब मैं जाऊंगा, प्रभुपाद सेड दिस, दैट्स नेचुरल। I asked my mother's permission to go to the privy. That is natural. Although my mother is not restricting me, but I was asking for her permission. We cannot do without permission of the Supreme Soul, Supreme within the heart. Bhagavan ki permission ke bina hum kuch bhi nahi kar sakte. Then, when we do something wrong, how does Krishna Santaryami Paramatma give permission? Agar hum kuch galat karte hai, to phir Krishna kyun permission dete hai? नहीं देना चाहिए ना, उनको तो पता है कि गलत कर रहा है, तो क्यों देते हैं परमिशन? He gives permission when you do something wrong, because you cannot do anything without his permission. He has to give permission. उनको परमिशन देना पड़ता है, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे. He has to give permission. Why? He has to give permission. क्यों देते हैं वो permission? Because you cannot do anything without his permission. But the enjoyment and suffering will have to be born of you, by you. You ask for permission. I want to do this. आपने मांगा था कि ये करना है, उन्होंने नहीं कहा था. इसलिए कई बार बोला जाता है कि परमात्मा जो है उनमें दया नहीं होती है. परमात्मा is not merciful. I mean, sometimes Krishna help करते हैं परमात्मा के रूप में, but परमात्मा अपने आप में merciful नहीं है. उनका काम है उपदेष्टा अनुमंता. आपको परमिशन देते हैं, गलत करना है तो गलत का. क्यों? आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे ये करना है, गलत करना है, तो ओके. उनके परमिशन के बिना नहीं करते. ऑल राइट, यू डू इट, बट एट योर ओन रिस्क. उसका जो भी परिणाम आएगा, इसका जिम्मेदार तुम हो गए. इस तरह से परमात्मा परमिशन देते हैं. इवन दो कृष्ण डजंट वॉन्ट दैट यू डू इट, बट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट, so he gives you permission. Krishna, भगवान नहीं चाहते, बट आप चाहते हो ऐसा, तो he gives you permission. कृष्ण तो क्या चाहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, वो उनकी डिमांड है. लेकिन आपकी डिमांड अलग है. आई शैल नॉट सरेंडर सर, आई वॉन्ट टू डू दिस. तो ऑल राइट, यू डू इट एट योर ओन रिस्क. अगर आप कृष्ण की बात मान लोगे तो सारा चार्ज वो अपने आप ले लेंगे. ही विल टेक चार्ज. कृष्णा ले लेंगे पूरा. हम तो हम सर्व पाप ले लिया, सारा चार्ज ले लेंगे. लेकिन अगर आप नहीं लोगे, आप उनकी बात नहीं मानोगे, सदस्य योनि जन्म सो, फिर आपका जन्म होगा अलग अलग जगह पर. सो इन दिस वे ही इज उपदष्टा एंड अनुमंता, भर्ता भोक्ता महेश्वर. भगवान एक्चुअली वो पुरुष वही भरता भोगता है. ओके, 24. यस, जय क्वेश्चन.
अनुमंता के बारे में.
यस yes.
तो मतलब जैसे सुपर सोल परमात्मा तो कोई हेल्प नहीं करते, वो तो न्यूट्रल है.
ही कैन डू, बट कृष्ण उनके द्वारा करवा सकते हैं.
राइट. तो जैसे तीसरे अध्याय में इंद्रियाणी प्राणिया हूँ जैसे है, तो स्टेज है कि इंद्रियों से ऊपर मन है और मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है.
yes.
तो यही सिस्टम है हमें अपने कि हम जो गलत कर रहे हैं उसको रोकने का और अपने आप को अनर्थ निवृत्ति करने का, मतलब सोल या बुद्धि या मतलब यही सिस्टम है या कोई और? जैसे परमात्मा ऐसे बोल रहे हैं मोस्टली नहीं करते
ऐसे, तो गुरु हेल्प करते
हैं. हमारे सब कुछ हम पे ही है.
नहीं, आपका चॉइस आपके हाथ में है, लेकिन गाइडेंस देने का काम आपको शास्त्र भी देते हैं, गाइडेंस गुरु भी देते हैं, और वही गुरु परमात्मा के रूप में भी आपको हेल्प करते हैं. ही कैन डू दैट. लेकिन वो आपके चॉइस के अगेंस्ट में नहीं करते. सेम थिंग लाइक गुरु के पास, अगर आप गुरु ने कहा 16 माला जप करो, अब गुरु महाराज ने तो बोला 16 माला, लेकिन अगर आप नहीं करते तो गुरु आपको फसूली पे नहीं चढ़ा देंगे. वो आपको फोर्स नहीं करेंगे. यू आर फ्री टू डू. इसलिए प्रभुपाद यूज्ड टू से कि ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइज है. कृष्ण भावनामृत जो है ये वॉलेंटरी है, इसमें बलपूर्वक कुछ नहीं होता. हाँ, लेकिन ये रॉन्ग डिसीजंस जो है, चॉइस जो है, उसको कंट्रोल करने का उपाय भगवान ने तीसरे अध्याय में बता दिया कि प्रॉब्लम अज्ञानता का एंट्री है इंद्रियों के माध्यम से. तो इंद्रियों को एंगेजमेंट दे दो कृष्ण भावनामृत का, तो फिर जो गलत विचार है, गलत इच्छाएं है, वो अंदर आना बंद हो जाएगा। तो कम से कम वो अंदर नहीं आएगा, तो अंदर जो पड़ा होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसे हम एग्जांपल देते हैं कि अगर आप रोज मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हो तो आपकी भौतिक इच्छाएं जो है वो कमजोर हो जाती है, फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। आपको दिखता नहीं है, आपको लगा उसमें क्या है, सुबह मंगला आरती करने से, 16 माला जप करने से भौतिक इच्छा नष्ट हो जाती है। हाँ, हो जाती है। अगर आप प्रयास करके देखो, अगर आप रोज मंगला आरती करते हो, रोज 16 माला जप करते हो, सुबह रोज आप भागवत पढ़ते हो, धीरे 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 आपकी भौतिक इच्छा नष्ट हो जाती है। डायरेक्ट इफेक्ट पड़ते हैं। सो दिस वे यू कैन चेंज योर चॉइस। फिर टेक्स्ट नंबर 24।
जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पूर्ण जन्म नहीं होगा।
हाँ, तभी इसको मुक्ति मिल सकती है इधर। सो एम ऑफ द लाइफ इज ऑलवेज, यहाँ पर प्रपद एक लेक्चर में बताया कि जन्म मृत्यु जरावादी से मुक्त हो जाना, ये उसका मूल उद्देश्य है। लेकिन भक्ति का एक स्पेशल क्वालिटी है कि आप इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हो। आपको शरीर त्याग करने की आवश्यकता नहीं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इसी शरीर में रहते रहते आप मन बुद्धि और शरीर मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों अगर आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में समर्पित करते हो, इसी शरीर में रहते हुए आप मुक्त हो जाते हो। आपको मुक्ति के लिए शरीर नहीं बदलना पड़ता। दैट्स व्हाट यू डू आफ्टरवर्ड्स, दैट्स व्हाट यू डू बिफोर, दैट्स द सेम थिंग। प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल नेचर, द सुपर सोल एंड द इंडिविजुअल सोल एंड देयर इंटररिलेशन मेक्स वन एलिजिबल टू बिकम लिबरेटेड एंड टर्न टू द स्पिरिचुअल एटमोस्फेयर without being forced to return to this material nature. इसके अलावा और कोई उपाय है? 25 पढ़िए।
कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं।
हाँ, तीन पद्धति बताई गई है यहाँ पर। एक है ध्यान, जो अष्टांग योग का विषय में है। फिर वो लोग मुख्य रूप से परमात्मा पर ध्यान करना चाहते। फिर सांख्य वाले जो होते हैं वो कल्टीवेशन ज्ञान का अनुशीलन करने वाले सांख्य योगी जनरली होते हैं। और वो लोग मुख्य रूप से फिलोसॉफी को प्राइमरी बनाते हैं और ध्यान को गौण बताते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। ध्यान के लिए सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी होता है नॉलेज। और तीसरे होते हैं निष्काम कर्मयोगी। और ये निष्काम कर्मयोगी जो होते हैं, बलदेव विद्याभूषण उनके विषय में कहते हैं कि ऐसे लोग कई बार ज्ञान का अनुसरण भी करते हैं, कई बार ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य होता है विरक्त होकर के कर्म करना, अनासक्त होकर के कर्म करना, उनका उद्देश्य यही होता है। ये पहले जो 6 अध्याय हमने चर्चा किए थे उसके अंदर ये तीनों का वर्णन आ जाता है, अष्टांग योगी, निष्काम कर्म योगी और ज्ञान योगी, इन तीनों का वर्णन आता है। यस, टेक वन मोर श्लोक, 26 लास्ट श्लोक फॉर दिस। पढ़िए।
ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं।
हाँ, वो अन्य का अर्थ होता है कुछ ऐसे लोग भी है जो अन्य तो एवं अजानंत, वो लोग बहुत ही नए है, अर्थात जिनको भक्ति के मार्ग में या आध्यात्मिक विषय में कोई रुचि नहीं है, अजानंत उनको। लेकिन वो लोग गलत नहीं है। जैसे इंडिया में बहुत सारे गांव है, तो क्या सब अगर वो कोई भक्त नहीं है तो क्या बाकी जितने भी सब दुष्टात्मा है? नहीं, दुष्ट नहीं है सब लोग, लेकिन अजानत है। पानी अजाना तक आर्थ होता है वो बेचारे जानते नहीं है, अगर उनको बता दिया जाए तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे हम इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं, तो मंदिर जब अगर हमारे प्रभुपाद तो कहते थे अपने लिए कि मेरे लिए तो एक छोटी सी कुटिया में बैठ कर मैं तो माला का जप कर सकता हूँ, मुझे बड़े बड़े मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बड़े बड़े मंदिर तुम्हारे लोगों के लिए, तुम लोग आओगे इसमें आकर के भक्त बनोगे, मुझे आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये बड़ा बड़ा टेम्पल है, जैसे ऑपुलर मंदिर है, राधा गोविंद जी मंदिर, ऐसे बड़े बड़े मंदिर, तो इसमें आप देखो संडे को इतने सारे लोग आते हैं, तो इसमें से जितने लोग आते हैं उसमें से डिवोटीज कितने होंगे, 10-20% 30% विजिटर्स में से, राइट। अधिकतर लोग तो नॉन डिवोटी होते हैं, लेकिन इसमें से कई लोग होते हैं जो अजान आता है, मीन्स अगर उनको अप्रोच किया जाए तो वो लोग भक्त बन सकते हैं। दुर्भाग्य है कि अप्रोच अब नहीं कर पाते, इतने सारे लोग आते हैं आके चले जाते हैं, यू नो वी आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी, हम उनको अप्रोच नहीं कर पाते व्हाट से एवर, कोई भी रीजन हो, लेकिन हम उनको अप्रोच नहीं कर पाते। आते हैं दर्शन करते हैं, अगर आप उनको कभी दोबारा ऐसे मिलकर कभी ऐसे क्यों हरे कृष्ण बोलोगे ना, दे विल ऑल्सो से वेरी नाइसली हरे कृष्ण, आपको बड़े अच्छे से हंसकर हरे कृष्ण भी बोलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू अप्रोच देम। देयर आर मेनी अजानता, बहुत सारे ऐसे है कि जो अजानता है, अगर उनको बताया जाए सच तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैनी वाइफ वी आर ओपनिंग मैनी सेंटर्स, अवर ड्यूटी इज टू गिव देम चांस, दैट इज प्रीचिंग। दे विल इंक्वायर कि मैं किस तरह से जीवन को सफल करता हूँ, मैं आप या आप लोग कृष्ण की पूजा कैसे करते हो, वो लोग भी भगवत धाम जा सकते हैं, वो लोग भी आपकी तरह माला गरीब कर सकते हैं, वो भी भक्त बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट टेक चांस ऑफ लर्निंग दिस ग्रेट साइंस, वी आर सो अनफॉर्चुनेट, वी आर कैनवासिंग, वी आर गोइंग डोर टू डोर, मैराथन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिशिंग, सो मेनी बुक्स, पुस्तक वितरण करते हैं, इसमें कहीं अजाना तो लोग आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। आपको लगेगा कि बुक लेके चला गया, बाद में ना उसका कॉन्टेक्ट है, ये भी एक हमारा एक ड्रॉबैक है कि हम उनका कॉन्टेक्ट से फॉलो अप नहीं कर पाते, दैट्स फाइन, अगर नहीं होता है तो भी चलेगा, लेकिन होता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि भगवद गीता तो अपना काम करने ही वाला है, प्रभुपाद के ग्रंथ जो है वो तो अपना काम करने ही वाला है। लेकिन ऐसे कई अजानते है, ऐसे वो लोग हेल्प बन सकते हैं, जैसे प्रसाद फूड फॉर लाइफ, दे अप्रिशिएट, उनको अच्छा लगता है, दे फील वेरी गुड, प्लीज कम हियर टेक प्रसाद, हियर सम फ्रॉम समथिंग फ्रॉम भगवत गीता, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव नो टाइम, देर आर मेनी पीपल, दे से नो दे हैव नो टाइम, दे आर वर्किंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, दे विल एग्री टू ट्रांसफर फ्रॉम दिस बॉडी। एक्चुअली ये अजानत में वो सभी आ जाते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव, अजानत का अर्थ अज्ञानी, लेकिन कुछ अज्ञानी ऐसे होते हैं कि ये लोग अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। बट देयर आर सम पीपल दे वर्क लाइक कैट्स एंड डॉग्स, दे विल एग्री टू ट्रांसफॉर्म वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप उनको कहोगे ना कि आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, सो वो लोग 100% यस, एग्री, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आई मीन सो ग्रॉसली इग्नोरेंट, उसमें क्या प्रॉब्लम है, दूसरा जन्म ले लेंगे तो ले लेंगे, उसमें क्या है, इतने सारे जन्म बीत चुके हैं, एक और जन्म ले लेंगे, उसमें क्या, कौन सी बात है, आई मीन सो ग्रॉसली, दैट इज माया, दे विल नॉट ट्राई टू स्टॉप दिस, माया इज सो स्ट्रॉन्ग। हमारा काम है उनको प्रचार करना, ये हमारा कर्तव्य है, यही है, सो वी हैव एक्सेप्टेड इट, वी हैव फॉरगॉटन दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, हम भूल गए भगवान को। कृष्ण हमारा कृष्ण भगवान तो आंदोलन क्या है, कृष्ण मैं आपको भूल गया हूँ, आपका संबंध मैं भूल गया हूँ, इसे कृपा करके मुझे आपकी सेवा में लगाइए, मैं स्वामी नहीं हूँ, ऐसा हर एक व्यक्ति संसार में आपका सेवक है, और किस प्रकार का सेवक है, और हम लोग किस प्रकार के सेवक है, समझ इज दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ माई सेंसेस, मैन इज थिंकिंग इज अ मास्टर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेंस एंजॉयमेंट, मनुष्य सोचता है कि वो स्वामी है, लेकिन क्योंकि वो भोग करना चाहता है। ही बिकम द सर्वेंट ऑफ हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी का दास बन जाता है। एक्चुअली आई एक्सेप्ट अ वुमन, मैं एक स्त्री को स्वीकार करता हूँ मेरी पत्नी के रूप में, लेकिन वास्तव में मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ कि मैं तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूँ। आई एग्री टू बिकम योर सर्वेंट। इफ आई कैन नॉट सेटिस्फाई हर नाइसली, अगर मैं उसको अच्छा संतोष नहीं दे सकता, शी विल रिबेल, आई डोंट नो व्हाट रिबेल, वो सीधा विद्रोह करेगी। एंड शी वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हर सेंसेस, वो उसका उद्देश्य एक ही है कि तुम मेरा दास बनो। सो उसको अपनी इंद्रिया तृप्ति करनी। फिर मेरे सन्स, मेरे डॉटर्स, इवन माई सर्वेंट्स, नाउ डे यू कीप सर्वेंट एंड यू पे हिम, थोड़ा कुछ अगर वो असंतुष्ट हो गया, तुरंत काम वाला आपका जो होता है सर्वेंट उससे छोड़ के चला जाता है ना। माताओं को तो पता होगा, आप सर्वेंट होता है तो आपको उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है हाँ भाई तुझे जो टाइम पे आना है उस टाइम पे आओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुट्टी लोगे तो तुम्हारा सैलरी भी कट नहीं करेंगे, कुछ नहीं है। राइट, सर्वेंट सर्वेंट का, या सो वी ऑल्सो ट्राई टू बी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, सेवा के सेवा करते। बट दैट्स व्हाट यू हैव टू फ्लैटर हिम, आप उसको गुणगान करना पड़ेगा, तुम्हारा जैसा काम तो आज तक एक भी सर्वेंट ने नहीं किया, तुम इतना अच्छा काम कर रहे, यू हैव टू फ्लैटर, अदरवाइज वी विल गो अवे। इन दिस वे वी आर सर्वेंट्स, वी आर नेवर मास्टर, बट बाय इल्यूजन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज वी वॉन्ट टू सेटिस्फाई सेंसेस, देयरफॉर वी आर सर्वेंट ऑफ द सेंसेस। हम इंद्रियों को भोग करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इंद्रियों के दास हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये सेवा की भावना कंटिन्यू करनी है, लेकिन कृष्ण का सेवक बनना है। तो ये कैसे हो सकता है? श्रुति पारायण, सिंपली बाय हियरिंग, केवल सुनने मात्र से ये हो सकता है। अन्य का एक अर्थ ये भी, जनरल पब्लिक के विषय में, दे आर लाइक एनिमल, इस चैप्टर की लैंग्वेज में इसको क्षत्रज्ञ, एक्सपीरियंस मेडिकल मैन अटेंडिंग अ मैन, कोई मरने वाला है, वो व्यक्ति उसके पास कोई अच्छा अनुभवी डॉक्टर आता है, सब प्रकार के ट्रीटमेंट करता है, और बाद में आदमी मर जाता है तो बोले क्या हुआ? बोला हमें नहीं पता, कैसे मर गया नहीं पता। आजकल के डॉक्टर बोल देते हैं कि ये सब ऊपर वाला अंत में से तय करेंगे, आजकल तो डॉक्टर बोलते होंगे पता है, बाद में ब्लेम उनके ऊपर आएगा, इससे बोलते ब्लेम डाल दो भगवान के ऊपर, साइन करवा देते, बोले जो कुछ भी होगा वो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। सो देयरफॉर देयर नॉलेज इज इम्परफेक्ट, इसलिए उनका जो ज्ञान है वो अपूर्ण है, उनको नहीं पता कि शरीर आत्मा जो है शरीर छोड़कर चला गया। सो अन्येतु एवं अजानंत का अर्थ ये भी है कि दे डू नॉट नो। इसलिए उनको बोलते सहयोग गोखरा, गोखर का अर्थ होता है गाय गधा, गाय और गधा, गो मिस गाय, खर मिस गधा, वो लोग गोखर की तरह है। तो जितने भी ये गाय और गधे के जैसे लोग हैं, वो सब हमारे पास आए, प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता को सुने और देखे कि किस तरह से भगवान की पूजा होती है, और इस तरह से वो लोग कृष्ण को समझ पाएंगे शायद, नहीं तो फिर अपने ये इतना स्ट्रगल क्यों करते, टीओवीपी के नाम, टीओवीपी के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना मंदिर बनाने के लिए, फिर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, बॉम्बे का प्रोजेक्ट प्रभुपाद ने कितना संघर्ष करके बनाया, तो ऐसे बड़े बड़े टेम्पल जो है उसके पीछे इतना संघर्ष क्यों करते? क्योंकि ये गाय और गधे जैसे जो लोग है वो उसका उपयोग कर सके, उसका एडवांटेज ले सके, तभी वो भक्त बन पाएंगे, नहीं तो भक्त नहीं बन पाएंगे। सो हमारा जो योजना है वो बहुत बड़ा है, हमारा आंदोलन बहुत बड़ा है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, लेकिन अपना जो आंदोलन है वो उनको आध्यात्मिक ज्ञान देता है, इसलिए ये सबसे उत्तम कोटि का आंदोलन है। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को जब पूछा था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने बताया था कि जो लोग ये वर्णाश्रम को फॉलो नहीं करते वो लोग गाय और गधे के तर समान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बाद में बताया सर्वधर्म परित्यज्य, दैट्स इम्पोर्टेंट, बाकी सब एहो बाह्य। सो एनीवे, सो प्रभुपाद हैज गिवन अ वेरी बिग पर्पट ऑन दिस। सो नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, ही सेज रामानंद राय ने बाद में कहा, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव, अगर कोई व्यक्ति अपने बल से अपने ज्ञान से वो समझने का प्रयास करेगा तो नहीं कर पाएगा, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शुण्वताम जीवंत स्तन मुखारिताम भवदीय वार्ता, सुनना पड़ता है भगवान के भक्तों के मुख से, अन्यथा ये नहीं हो सकता। ज्ञाने प्रयास मदपास्य नमंत एव जीवंति सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता सुदिगताम तनुवाक मनोभि। तो क्या करना चाहिए, अपना प्रयास छोड़ देना चाहिए, भक्तों के मुख से सुनकर उसको स्वीकार करना चाहिए, और स्थान स्थिता जो जिस स्थान में हो वहीं पर रहो, सुदिगताम तनु वाक मनो, तनु अर्थात शरीर, वाक में वाणी और मन, इससे भगवान की सेवा में जुट जाना चाहिए, यही उपाय एकमात्र है। सुनता हूँ स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हमारे हृदय में जितना भी अभद्र है वो सब साफ हो जाएगा अगर भगवान की भक्तों सकर्म सुनते, देन फिर गोखला नहीं रहेगा, फिर वो भक्त बन जाएगा। सो स्टॉप हियर एंड देन नेक्स्ट टाइम वी विल हैव फर्दर डिस्कशन ऑन दिस।